नमस्कार, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारा युग निर्माण सत्संकल्प इसके मूल सिद्धांतों पर बात कर रहे हैं। ये युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित है और ये उनके युग निर्माण अभियान की नींव है, ऐसा कह सकते हैं।
जी बिल्कुल,
ये सत्संकल्प मतलब श्रेष्ठ संकल्प व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह के परिवर्तन की दिशा दिखाते हैं।
सही कहा आपने, इसका उद्देश्य सिर्फ उपदेश देना भर नहीं है बल्कि ये एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। पूज्य गुरुदेव का मानना बिल्कुल स्पष्ट था कि समाज का उत्थान तभी होगा जब व्यक्ति खुद को सुधारेगा, तो ये संकल्प उसी आत्मनिर्माण की प्रक्रिया का एक तरह से आह्वान करते हैं।
तो आइए इस संकल्प पत्र की गहराइयों में थोड़ा उतरते हैं।
पहला संकल्प ही कहता है कि ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी माने और उसके अनुशासन को जीवन में उतारें।
और फिर तुरंत बाद दूसरा संकल्प शरीर को ईश्वर का मंदिर समझने की बात करता है, मतलब आत्मसंयम और नियमितता से आरोग्य की रक्षा। ये शरीर और ईश्वर के अनुशासन का कैसा संबंध है?
हाँ, ये संबंध बहुत गहरा है। यहाँ देखिए, स्वास्थ्य को सिर्फ एक भौतिक चीज नहीं माना गया है, उसे आध्यात्मिक साधना का आधार माना है पूज्य गुरुदेव ने। जब हम शरीर को ईश्वर का मंदिर समझते हैं तो फिर उसकी देखभाल, उसका संयम, उसकी नियमितता, ये सब एक पवित्र कर्तव्य बन जाता है।
अच्छा,
ये बाहरी और भीतरी शुद्धि, आप कह सकते हैं, दोनों को जोड़ता है। पहला संकल्प वो ब्रह्मांडीय अनुशासन है तो दूसरा व्यक्तिगत अनुशासन जो उसी का एक हिस्सा है।
हाँ हाँ, समझ गई। अच्छा, ये व्यक्तिगत अनुशासन की बात फिर मन पर भी आती है। संकल्प 3 कहता है कि मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखें। स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन, आत्मचिंतन, और सत्संग यानी अच्छे विचारों और अच्छे लोगों का साथ। आज के समय में जहां इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये कितना प्रासंगिक है।
अरे, अत्यंत प्रासंगिक। आज तो सूचनाओं का जैसे विस्फोट है ना, तो मन का भटकना बहुत ही आसान है। स्वाध्याय हमें आत्मनिरीक्षण की तरफ ले जाता है, सही ज्ञान की ओर, और सत्संग हमें वो सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा देता है।
जी,
ये दोनों मिलकर आप समझिए एक मानसिक कवच बनाते हैं। और इसी से जुड़ा है चौथा संकल्प भी, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम, इनका निरंतर अभ्यास। ये चारों तरफ का अनुशासन ही तो है जो स्थिर और उद्देश्यपूर्ण जीवन का आधार बनता है।
बिल्कुल, व्यक्ति से आगे बढ़कर अब थोड़ा समाज की ओर देखें। 5वां संकल्प कहता है कि भाई, स्वयं को समाज का एक अभिन्न अंग मानो और सबके हित में ही अपना हित समझो। और फिर 6ठा संकल्प है, मर्यादाओं का पालन, वर्जनाओं से बचाव और जो नागरिक कर्तव्य है उनका निष्ठा से पालन। ये व्यक्तिगत सुधार को सामाजिक जिम्मेदारी से कैसे जोड़ता है?
ये तो सीधा सीधा जोड़ता है। व्यक्ति समाज से अलग है ही कहाँ? जब हर व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहेगा, नैतिक वर्जनाओं का ध्यान रखेगा, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करेगा, तो समाज तो अपने आप बेहतर होगा।
हाँ, बात तो सही है।
और इसी सोच को 7वां संकल्प आगे बढ़ाता है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, इनको जीवन का अविच्छिन्न अंग बनाना। ये सिर्फ व्यक्तिगत गुण नहीं रह जाते, फिर ये सामाजिक सद्भाव और प्रगति के स्तंभ बन जाते हैं।
कुछ संकल्प तो हमारी जो आम धारणाएं हैं उनको सीधी चुनौती देते हुए लगते हैं, जैसे 9वां संकल्प कि अनीति से मिली सफलता से अच्छा है नीति पर चलते हुए मिली असफलता, उसको स्वीकार करो, और 10वां कि मनुष्य का मूल्यांकन उसकी सफलता या पद से नहीं बल्कि उसके सद्विचारों और सत्कर्मों से करो। आज की दुनिया में ये कितना व्यावहारिक लगता है जहां सब दौड़ रहे हैं।
देखिए, व्यावहारिक होने से ज्यादा ये आवश्यक है। पूज्य गुरुदेव मूल्यों पर आधारित एक जीवन दृष्टि दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब फौरी सफलता के पीछे भागने के बजाय चरित्र निर्माण पर, नैतिक दृढ़ता पर जोर है, और वही स्थायी सुख और संतोष का मार्ग भी है। मूल्यांकन का आधार बाहरी उपलब्धियों की जगह जब आंतरिक गुण बनते हैं तो व्यक्ति ज्यादा मानवीय बनता है और समाज ज्यादा न्यायपूर्ण। और इसी कड़ी में वो 12वां संकल्प भी है, नर नारी के बीच पवित्र दृष्टि।
जी,
और 13वां संसार में अच्छी प्रवृत्तियों को फैलाने के लिए अपना समय, ज्ञान, पुरुषार्थ, धन, जो भी हो सके उसका अंशदान देना, ये सब समाज में सकारात्मकता और सहयोगी तो बढ़ाते हैं।
हाँ बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें है, विवेक को परंपराओं से अधिक महत्व देना, ये 14वां संकल्प है।
ये तो रूढ़िवादी सोच पर एक तरह का प्रहार लगता है।
और साथ ही 16वां संकल्प राष्ट्रीय एकता और समता के प्रति निष्ठावान रहना, बिना किसी भेदभाव के, जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, कुछ भी हो।
बिल्कुल बिल्कुल, ये विवेक और तर्क को महत्व देता है, आंख मूंद कर किसी चीज के पीछे चलने को नहीं। एक प्रगतिशील समाज के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम परंपराओं का सम्मान तो करें, पर उन्हें विवेक की कसौटी पर परखें भी।
सही कहा।
और राष्ट्रीय एकता का संकल्प, वो तो खैर किसी भी राष्ट्र की मजबूती के लिए अनिवार्य ही है, जो हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर आपसी सम्मान और समानता पर टिका हो।
और फिर अंत में 17वां और 18वां संकल्प, ऐसा लगता है जैसे पूरे दस्तावेज का सार हो।
17वां, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं, और 18वां, इस विचार पर पूरा विश्वास कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा।
हाँ, ये दोनों संकल्प व्यक्ति के हाथ में असीम शक्ति सौंपते हैं। ये बताते हैं कि भाई परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। और जब व्यक्ति बदलेगा तो समाज और युग का बदलना तो निश्चित है। ये निराशा की जगह आशा देता है और कर्मठता का संदेश देता है। तो हमारा युग निर्माण सत्संकल्प का जो मूल संदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट है। व्यक्तिगत बदलाव ही सामूहिक और युगीन बदलाव की कुंजी है। ये पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रस्तुत आत्मविकास और समाज निर्माण की एक बहुत ही सुस्पष्ट रूपरेखा है।
जी, और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। 17वां संकल्प कहता है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। तो जरा सोचें, अगर कोई व्यक्ति इन संकल्पों में से किसी एक को भी, सिर्फ एक को, पूरी निष्ठा और सजगता से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करे, तो उसके अपने जीवन में और उसके आसपास के माहौल में कैसा सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है, ये हम सबको सोचने का विषय है।